न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर, सागर की लहर लहराती है मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर।
ओम शांति। आज भट्ठी का तीसरा दिन प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उषा दीदी का लौकिक और अलौकिक जन्म विदेश की धरनी अफ्रीका में हुआ है। दोनों ही रीति से वहाँ बड़े हुए और फिर भारत में दोनों ही रीति से ट्रांसफ़र हुई और भारत में आकर 1980 से आपने अपने समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। 1980 से 1992 तक बॉम्बे और हैदराबाद में अपनी सेवाएं दी और फिर 1993 में आप हेडक्वार्टर में आ गए और हेडक्वार्टर में रहकर ही देश विदेश की आप सेवाएं कर रहे हैं। जब आप यहाँ आए उस समय विदेशी भाई यहाँ पर SML ट्रेनिंग दे रहे थे और उसी SML ट्रेनिंग को लेकर आपने उसको भारत की भाषा में ढाला और उसका उपयोग उसको एक हथियार बना के, साधन बना के देश के विभिन्न स्थानों पर कंपनियों में, कॉलेजों में, कॉरपोरेट में जा जा के बाबा का नाम बाला किया, जिसके आधार से आपको सभी किस नाम से जानने लगे, SML वाली उषा बहन। और उसके बाद आपने रामायण महाभारत आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसका आध्यात्मिक रहस्य ब्राह्मण जीवन को बताया। और उसके बाद जो बाबा साकार मुरली में बार बार कहते हैं, बच्चों ने अभी तक मेरी एक आश पूरी नहीं की है, कौन सी? गीता का भगवान शिव है, ये सबको सिद्ध करके दिखाओ। तो वहां अपना ध्यान केंद्रित करके वो सिद्ध करने का अपना पूरा प्रयास किया, जिसमें आप सफल रहे। बड़े बड़े महामंडलेश्वरों, धार्मिक क्षेत्र के विद्वानों के आगे जब आप ये बातें रखते हैं, बहुत ही सहजता से वो सब आपकी बातों को स्वीकार करते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे यज्ञ के अंदर जो पॉलिटिशियन विंग है, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे सभी कॉन्फ्रेंसेस, विंग्स, शिविर, भट्टियों में आप मुख्य रूप से अपना वक्तव्य रखते हैं, जो आज भी हमारे सामने हैं। तो आज हम आपसे सुनेंगे, जैसे हम गीत सुन रहे थे, भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर सिमर दिल बहुत हर्षाता है। तो ज्ञान को सिमरण कर क्या करना है, उस पर विचार सागर मंथन करना है, ताकि जब विचार सागर मंथन करे तो मक्खन निकले, और वो मक्खन खाकर ही क्या मिलेगी, ताकत। तो ऐसी ताकत प्रदान करने वाला मक्खन हम कैसे निकालें विचार सागर मंथन करने के लिए, वो सुंदर युक्तियां बताने के लिए आज हमारे बीच में दीदी जी हैं, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा का बेहद का ज्ञान है, और इतना बाबा ने अखुट ज्ञान का खजाना दिया है, जो जैसे कहा गीत में, सिमर सिमर करके सुख पाए, खुशी हो। सचमुच बाबा का ये अनमोल रतन, जब हम उसका विचार सागर मंथन करते हैं, तो उस विचार सागर मंथन करने से कितनी प्राप्तियां होती है। अतीन्द्रिय सुख तो प्राप्त होता ही है, खुशी बढ़ती है, नशा चढ़ता है ना? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये विचार सागर मंथन करने से हमारी आंतरिक धारणाएं परिपक्व होने लगती है, और अवस्था उससे बहुत अच्छी हो जाती है। जो बार बार हलचल में आते हैं, अंदर में हमारी स्थिति फ्लक्चुएट होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना? तो विचार सागर मंथन करने से वो शक्ति हमें प्राप्त होती है कि जिससे हमारी अवस्था एक रस होने लगती है, अचल अडोल हो जाती है, और जितने भी विघ्न आते हैं तो विचार सागर मंथन करने से निर्विघ्न स्थिति हम अपनी बना सकते हैं। कई प्रकार के जो व्यर्थ है वो व्यर्थ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि समर्थ ज्ञान का चिंतन चालू हो जाता है। व्यर्थ इसीलिए चलता है क्योंकि इतना ज्ञान का खजाना जो मिला है उसको चिंतन में नहीं ला सकते हैं। अगर ये चिंतन में आने लग जाए तो ये जो शिकायत है व्यर्थ चलता है, व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और कई बार ये व्यर्थ ज्यादा चलता है, तभी विघ्न खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में भी कि प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। समस्याएं व्यक्ति की अपनी कमजोरी की उपज है, और इसीलिए अगर कमजोरी समाप्त हो जाए, जैसे कहा खुराक अगर अच्छा मिल रहा हो, हेल्दी हो जाते हैं, तो व्यक्ति के आंतरिक कमजोरी समाप्त हो जाती है। और ये कमजोरी जब समाप्त हो जाती है तो समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो इतने फायदे हैं विचार सागर मंथन करने के। और निरंतर अगर हम उस सिमर सिमर करके सुख का अनुभव करते रहे, जिसका यादगार भक्ति में भी दिया गया कि हाँ भाई सिमर सिमर सुख पाओ, हर घड़ी सिमरण करते रहो। उन्होंने सिमरने का महत्व बता दिया, लेकिन वास्तव में सिमरना है ज्ञान का सिमरण करना, और उसी से बाबा की याद भी हमारे अंदर सहज रहती है, बनी रहती है। तो ये सिमरण या ये विचार सागर मंथन कैसे करें? पहले हमारे जीवन में विचार सागर मंथन नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे पास खजाना ही नहीं था। जो था दुनिया के अंदर भी, आज लोगों की हालत देखो क्या है, क्या सोचते हैं, किचड़े को ही सोचते रहेंगे, है ना? और उससे प्राप्ति तो कुछ नहीं है। हमें अभी खुशी होती है क्योंकि हमारे पास चिंतन करने के लिए बहुत सारा खजाना बाबा ने दिया है, और इसीलिए इसको कहा गया विचार सागर मंथन। क्यों? क्योंकि विचारों का सागर है, इतना सागर है अथा इसका मंथन। तो जितना ज्ञान को अपने अंदर समाते जाएंगे तो विचार सागर मंथन कर सकेंगे। जैसे वो तीन गुड़िया की कहानी नहीं है, सुनिए ना तीन गुड़िया की कहानी। कि एक बार एक खिलौना बेचने वाला बेचने बैठा था, सारे खिलौने तो उसके बिक गए, लास्ट में तीन गुड़ियाएं रह गई। तो उस नगर के राजा की ये विशेषता थी कि शाम को वो चक्कर लगाने निकलता था खास मार्केट में, और देखता था कि जिसकी कुछ ऐसी चीजें रह गई जिसके कारण वो अभी तक बैठा हुआ है, तो राजा उसको खरीद लेता था ताकि वो पैसा लेकर सहजता से घर जाए, अपना भोजन पानी आदि बच्चों के लिए कर सके। तो जब ये खिलौने बेचने वाला चिल्ला रहा था गुड़िया ले लो, गुड़िया ले लो, है ना, तो देखा तीन गुड़िया ही बची है। तो राजा ने पूछा कितने की है ये गुड़िया, मैं ले लेता हूं। तो उसने कहा ये 10 रुपए की, ये 100 रुपए की, और ये 1000 रुपए की। तो कहा दिखने में तो एक जैसी है, फिर दाम अलग अलग क्यों है? तो उसने कहा नहीं, तीनों की विशेषताएं अपनी अपनी है। क्या विशेषता है? तो तार घुसाया, एक कान से घुसाया, दूसरे कान से वो तार निकला। बोले इसकी 10 रुपया वैल्यू है। दूसरी गुड़िया के कान से तार घुसाया, मुख से बाहर निकला, इसकी 100 रुपया वैल्यू है। और तीसरी गुड़िया के कान से घुसाया, वो निकला ही नहीं, अंदर चला गया पूरा तार, क्या इसकी 1000 रुपया है। तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जो ज्ञान एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल देते हैं उसकी वैल्यूलेस। 10 रुपया क्या होता है? वैल्यूलेस। जैसे दुनिया के अंदर लोग खाली कथाएं सुन करके आते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं है, सुना और झाड़ करके आ गए, जीवन में उसका कोई अनुभव नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। और इसीलिए सुनने का जो आनंद है बस उस समय मिला, कन रस मिला और फिर ओम शांति, है ना। दूसरे प्रकार के हैं जो ज्ञान सुन करके वर्णन करते हैं, वर्णन किया उसकी फिर भी थोड़ी वैल्यू है कि चलो उसने बांटा तो सही, ज्ञान दान तो किया, तो थोड़ा बहुत पुण्य उसको प्राप्त हो गया। लेकिन तीसरे की वैल्यू सबसे अधिक जिसने उसको समाया। तो इसीलिए बाबा कहे हमेशा मुरली में, बाबा भी तीन प्रकार के बच्चे देखते हैं, एक सिर्फ सुनने वाले, दूसरे वर्णन करने वाले और तीसरे समाने वाले। सुख उसी को प्राप्त होता है, प्राप्तियां उसको होती है जो अंदर में समाता है। पहले हमारा विचार सागर मंथन नहीं चलता था क्योंकि हमने कोई भी बात को समाया ही नहीं। समाया क्यों नहीं? क्योंकि समझा ही नहीं। समझे इंसान तब तो समाए। कथाएं सुनी हमने, उसको उसके पीछे के भावार्थ को समझा ही नहीं। तो समझा नहीं तो उसमें से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति भी नहीं कर सके। और इसलिए माया के अनेक तूफानों में उसकी चपेट में आते रहे, अनेक प्रकार की समस्याओं में घिरते रहे, समाधान प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि समाया ही नहीं तो समाधान कहां से मिलेगा? समाधान तो अंदर से निकलेगा, वो समाधान ही नहीं हुआ। और उस समस्याओं की चपेट में, माया की चपेट में ऐसे आ गए जो कई बार कई लोग एकदम अपना मानसिक संतुलन तक खो देते हैं, जीवन का संतुलन समाप्त हो जाता है। और अब जबकि हमें इतना खजाना मिला है तो हमारा चिंतन चालू होता है, क्योंकि रोज रोज सुन करके क्या होता है? समाता जाता है, समाता जाता है। लेकिन समाने के बाद भी अभी हलचल तो करो अंदर में, है ना, सागर मंथन करना है, नहीं तो वो बैठ जाएगा अंदर में, वो भी कोई काम का नहीं रहेगा। है बहुत ज्ञान लेकिन उसको मथना जरूरी है। जितना मथेंगे उतना ही वो हमारे जीवन का, शक्ति का स्वरूप बनेगा। कुछ समय पहले बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी ये बात कही थी कि जिस तरह भोजन को हजम करने पर शक्ति मिलती है, खाली खाते रहे खाते रहे खाते रहे, हजम ही नहीं हुआ तो शक्ति नहीं बनती है। ठीक इसी तरह ज्ञान को स्वीकार तो किया लेकिन उसको हजम करना जरूरी है। अब हजम कैसे करेंगे? तो ज्ञान की जो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, मनन शक्ति की, मनन करने की जो विधि बाबा ने बताई, कि ज्ञान की कोई भी पॉइंट हो उस पॉइंट को अप्लाई करना सीखो। जब अप्लाई करेंगे उसको तो उसका रिजल्ट निकलेगा। मान लो कि कोई समस्या है, समस्याएं जीवन में दो प्रकार की आती है। कौन सी दो प्रकार की समस्या आती है? एक समस्या है व्यावहारिक स्तर पर, हमारा अनेकों के साथ जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में समस्या आती है, कहां संस्कार टक्कर हुए, कहां कुछ हुआ, कहां किसी ने हमारी भावनाओं को समझा नहीं और वहां से समस्या क्रिएट हुई, है ना। तो एक समस्या है व्यावहारिक स्तर पर समस्या आना, दूसरी समस्या है अपने पुरुषार्थ में। अपने पुरुषार्थ में समस्या कैसे आती है? कि जहां पुरुषार्थ में कमजोरी आई और वो कमजोरी का प्रयोग होता है। मान लो कि सुबह अमृत वेला उठना है, पुरुषार्थ मुझे करना है, लेकिन सुबह सुबह उठे भी, बाबा ने उठाया भी, और मन में आए 5 मिनट खाली, और 5 मिनट का 4:45 हो जाता है ना। और जब 4:45 हो जाता है, आज तो अमृत भी लग गया है ना। तो पुरुषार्थ में समस्या कहां आई? जब कमजोरी का प्रयोग हुआ। कौन सी कमजोरी? आलस्य। तो कोई न कोई कमजोरी का जब प्रयोग होता है, वहां अपने ही पुरुषार्थ से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। बार बार लगातार कई दिनों से अमृत वेला अगर मिस हो, उसके बाद चेहरा देखो कैसा होता है। वो खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ने वाला चेहरा होता है? होता ही नहीं है, है ना? तो इसलिए कहा कि दो तरह की समस्याएं जीवन में आती है, एक व्यवहारिक स्तर पर, और व्यवहारिक स्तर पर भी इसीलिए आई क्योंकि वहां भी कमजोरी का प्रयोग हो गया, संस्कार टक्कर हुए या गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आया तो नेचुरल है, समस्या तो क्रिएट होगी, है ना। और दूसरा है पुरुषार्थ के स्तर पर, जहां कमजोरी का प्रयोग हुआ वहां भी कमजोरी का प्रयोग। तो इसीलिए अगर कमजोरी का प्रयोग नेचुरल रूप में हो सकता है, तो बाबा की एक एक ज्ञान की पॉइंट जो हमें मिली है, ट्राई करें उसको प्रयोग करने की। कि आज बाबा ने जो कहा, चलो उसका प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करके देखो व्यवहारिक स्तर पर और पुरुषार्थ के स्तर पर, दोनों स्तर पर उसका प्रयोग करके देखो, उससे क्या रिजल्ट निकलती है, और उस रिजल्ट को अनुभव करते हुए खुशी होगी, अरे ये तो बहुत अच्छा काम किया, तो कल को दूसरे ज्ञान की पॉइंट का प्रयोग करेंगे। और जैसे जैसे एक एक ज्ञान की पॉइंट को हम प्रयोग में लाते जाएंगे, हमारा चिंतन चालू होता है। अच्छा, मान लो कि इतनी सफलता नहीं मिली, तो फिर विचार चलेगा कल को इस तरह से करके देखेंगे, कल को ऐसा करके देखेंगे, ये तरीका अपनाएंगे। क्योंकि बाबा के महावाक्य है, तो बाबा के महावाक्य तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। शायद मेरे प्रयोग करने के तरीके में कोई कमी है, चलो आज इस तरीके से प्रयोग करके, तो चिंतन चलना चालू होता है ना। ये विचार सागर मंथन का पहला बेस है। अच्छा, जैसे ही प्रयोग सही हो गया तो क्या होगा? प्राप्ति होगी, और प्राप्ति हमें खुशी का अनुभव कराएगी। ये तो बहुत इजी था, और ही संस्कार टक्कर में या अपने पुरुषार्थ में कभी जो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आंतरिक संतुष्टि नहीं मिली, ये करने से तो सहज मिल गई। अब फिर उमंग उत्साह अंदर में आएगा, अब उसको हर स्तर पर प्रयोग करें। कौन सा स्तर है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, है ना। ये चारों सब्जेक्ट में उसको प्रयोग करें, ये ज्ञान की पॉइंट को योग में उसका एप्लीकेशन करके देखें। आजकल दुनिया के अंदर मोबाइल निकले ना, मोबाइल में इतने एप्स आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। किस लिए होता है ये एप्स? क्यों यूज करें? नॉलेज गेन करने के लिए, खाली कार्य इजी करने के लिए, सरल करने के लिए, है ना। कार्य सरल करने के लिए, पहले वो छोटे मोबाइल होते थे, किसी व्यक्ति को नाम ढूंढना होता था तो कितना टाइम लगता था उसको। अब एक ऐप अंदर में डाल दिया गया कि भाई आप खाली पहला नाम का अक्षर भी डालो, उससे रिलेटेड सारे, तो उतना ही ढूंढना पड़ता है, दूसरा अक्षर डालो तीसरा, तो बस वही सामने आ जाता है और तुरंत उसको लगा दिया, टाइम सेव होता है। इसलिए ये एप्लीकेशंस है, उसमें प्राप्ति भी है, समय की बचत भी है और काम सरल हो जाता है। तो बाबा के भी विभिन्न एप्स है, ये ज्ञान के भी विभिन्न एप्स है। कौन से एप्स है बताओ? स्वमान है, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, स्वमान को यूज करो। और हाँ, बाबा ने जैसे कहा कि 8 बार स्वदर्शन चक्र घुमाओ, है ना। अच्छा, और कौन सा ऐप है? चार धाम की यात्रा करो, चलो बहुत अच्छी बात है। और कौन सा ऐप है? वरदान है बाबा के, रोज विभिन्न वरदान मिलते हैं, उसका प्रयोग करो, है ना। और ये 7 डेज का अपना जो कोर्स है ना, एक एक लेसन एक एक ऐप है, आत्मा का लेसन एक संपूर्ण ऐप है कि आत्मा का लेसन आप कैसे यूज कर सकते हैं हर स्तर पर। कौन से स्तर पर? मनसा वाचा कर्मणा के स्तर पर उसको यूज करो, आत्मा अभिमानी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति का प्रयोग करो। जो बाबा कहते दृष्टि के लेवल पर, वृत्ति के लेवल पर इसका प्रयोग करो कि मैं आत्मा, मेरी वृत्ति के अंदर अगर आत्मस्थिति है तो मेरी दृष्टि जब दूसरों को देखती है तो आत्म स्वरूप में देखती है। और उसकी प्राप्ति क्या होती है? ये ऐप को यूज करो कि एक आत्मा का लेसन कितना बड़ा ऐप है, एक परमात्मा का लेसन कितना बड़ा ऐप है। जो बाबा ने कई बार हम बच्चों को मुरली में कहा कि बच्चे आप कोई भी परिस्थिति के समय सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, हुजूर हाजिर हो जाएगा। ये ऐप को यूज किया, बहुत बड़ा ऐप है ये, है कि नहीं है? आपका डर समाप्त हो जाएगा, बाबा को याद करने से आपका डर समाप्त हो जाएगा। ऐसा ऐप दुनिया में कोई बना है जो आपका डर समाप्त कर सके? नहीं बना है। लेकिन ये ऐप इतना अच्छा है लेकिन हम यूज ही नहीं करते। यूज करके तो देखो कि मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, दिल से कहो आप, देखो बाबा आता है कि नहीं आता है। आपका अंदर का कोई भी प्रकार का भय होगा समाप्त तो हो जाएगा। तीसरा ऐप है सर्व संबंधों का। जिस समय आपको जो संबंध से बाबा को यूज करना, यूज करो। कभी उसको सखा भाव से याद करो, कभी प्रियतम के रूप में याद करो, कभी उसको माता पिता के रूप में याद करो, कभी सतगुरु का वरदान ले लो, कोई कार्य के लिए जा रहे हैं उसका वरदान ले लो। कितना बड़ा ऐप है। अच्छा, चौथा ऐप, सबसे बड़ा ऐप तो ड्रामा। कितना बड़ा ऐप बाबा ने दिया है ये जीवन के लिए कि बच्चे ड्रामा कल्याणकारी, फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ, यूज करो। और ये एक एक ऐप को यूज करके जो आपको रिजल्ट मिलेंगी, जीवन सरल हो जाएगा। कोई भी बात हुई, बाबा ने कहा ड्रामा बिंदी लगाओ, क्वेश्चन मार्क में नहीं जाओ। जब रॉन्ग एप्लीकेशन होता है ना, अगर क्वेश्चन मार्क में चले गए तो क्या होगा? समय भी वेस्ट जाएगा और प्रॉब्लम बहुत बड़ी महसूस होने लगेगी। और जब कोई ऐसी बात है तो समझ लो कोई जन्मों का कर्मों का हिसाब है, कर्मों का ऐप लगा दो, है ना? न गुस्सा आएगा आपको, न व्यर्थ चलेगा, कार्मिक अकाउंट पूरा हुआ, समाप्त हुआ, खुश हो गए, बंधन मुक्त हो गए। यूज करो ना, देखो आपकी स्थिति सदा एकरस रहेगी, खुशी में रहेगी, उमंग उत्साह में रहेगी, है ना? विचार सागर मंथन माना क्या, ये एप्लीकेशंस को यूज करना। ये जितने भी बाबा ने एप्स दिए हैं उसको यूज करना आना चाहिए। टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, पुरुषार्थ सरल हो जाएगा, खुशी उमंग उत्साह बनी रहेगी हमारे जीवन के अंदर, और किसी से हमारा टकराव नहीं, निर्बंधन हो जाएंगे, और विघ्न मुक्त निर्विघ्न स्थिति हमारी हो। इससे बड़ा और क्या प्राप्ति करना चाहते बताओ? ये विभिन्न एप्लीकेशंस को हर लेवल पर यूज करके प्रयोग करके देखो, दृष्टि के लेवल पर, वृत्ति के लेवल पर, स्मृति के लेवल पर, स्थिति के लेवल पर, वाणी के लेवल पर, कर्म के लेवल पर, व्यवहार के लेवल पर, हर लेवल पर उसका प्रयोग करो। बहुत अच्छी रिजल्ट और नवीनता बनी रहेगी लाइफ में। जो उब जाते हैं ब्राह्मण जीवन में, भाई है सुबह उठो, अमृत वेले में बैठो, मुरली सुनो और बस काम काज में जाओ, तो माना इतने पावरफुल एप्स होने के बाद भी हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। और जब यूज ही नहीं कर रहे तो क्या होगा? हाँ, लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, बहुत बढ़िया है, 1 लाख का है, लेकिन कुछ भी आता नहीं है उसमें, तो क्या फायदा? 1 लाख वेस्ट है, उसे तो वो छोटा वाला ही ले लेते थे, खाली फोन करने के लिए ही चाहिए तो, है कि नहीं? एंड्रॉइड लेकर के क्यों चल रहे हैं फिर? तो जीवन के अंदर बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे इतने उमंग उत्साह से आप जीवन, हर रोज एक नया एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव मिलेगा, और इस तरह से धीरे धीरे आप अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। बताओ, अनुभव की अथॉरिटी कौन नहीं बनना चाहते हैं? जो आज कई लोग कहते हैं डर लगता है, डर लगता है, क्यों डर लगता है? इसका मतलब अनुभव की अथॉरिटी नहीं है, तभी तो डर लगता है। अगर जो व्यक्ति अनुभव की अथॉरिटी बन जाए उसको डर लगेगा, कोई भी हो आ जाने दो, शक्तिशाली है ना। आज जो कई लोग डिप्रेशन के दुनिया के अंदर शिकार बन रहे हैं उसका कारण क्या है? वो व्यर्थ का एप्लीकेशन कर रहे हैं, व्यर्थ का एप्लीकेशन चल रहा है ना। ऐसा हो गया तो, उसने ऐसा कह दिया तो, उसने ऐसा हो कर दिया तो भय को क्रिएट करता जाता है। वो व्यर्थ का एप्लीकेशन चल रहा है ना, उसे प्राप्ति तो कुछ नहीं, परेशानी है। और ये परेशानी जो व्यक्ति को लास्ट में डिप्रेशन का शिकार बनाती है। कोई कितनी बात समझाए, कई बार हम देखते हैं कई बच्चे जो डिप्रेशन के शिकार बनते हैं उसके माँ बाप छोड़ दो, ये सोचो नहीं, तुम ये सोचो, कितना परेशान होते हैं उसको एक बात समझाने के लिए। ड्रामा देखो, बाबा कहते हैं ना ड्रामा कल्याणकारी है, तुम नहीं सोचो इसमें भी कोई कल्याण है, इसमें भी कोई कल्याण है, नहीं, लेकिन उसको व्यर्थ और नेगेटिव ही सोचना है तो आखिर कहां पहुंचेगा? डिप्रेशन का शिकार बन रहा है। तो इसीलिए मनन चिंतन करना, यानी ये विभिन्न एप्स का समय प्रति समय प्रयोग करो और हर रोज एक नया अनुभव जीवन के अंदर हासिल करो, और उसके बाद देखो जीवन में उदासी दूर दूर तक आपके नजदीक नहीं आ सकती है, व्यर्थ दूर दूर तक आपके नजदीक नहीं आ सकती। हमने तो इसका प्रैक्टिकल अनुभव किया, चाहे गीता को लेकर के, चाहे रामायण को लेकर के, चाहे SML को लेकर, ये सब बातों का जैसे जैसे, तो हर रोज एक ज्ञान वही है ना, लेकिन उसका प्रयोग करने से देखो हर रोज एक नया अनुभव होता है और इतना आनंद आता है, इतनी खुशी होती है। कोई नई खजाना मिले तो कितनी खुशी होती है। ये ब्राह्मण जीवन आपको ऐसा महसूस होगा जैसे उड़ती कला में उड़ रहे हैं। जो कई लोग बोर हो जाते हैं, वही वही दिनचर्या महसूस होती, उसका कारण यही है, न विचार सागर मंथन करना आ रहा है, इतना खजाना मिलने के बाद उसको यूज ही नहीं करना है, उसको लॉकर में अगर रख दिया कोई प्राप्ति नहीं। बाबा कहे उसको यूज करो, हर लेवल पर उसको, मनसा वाचा कर्मणा के लेवल पर यूज करो, संबंध संपर्क के लेवल पर उसको यूज करो, अपने पुरुषार्थ में उसको यूज करो, हर लेवल पर उसको यूज करते जाओ। हर लेवल पर यूज करेंगे तो क्या करेंगे, आप एक PhD डिग्री हासिल कर लेंगे। PhD क्या होता है? रिसर्च। हर लेवल पर उसका रिसर्च, कोई भी एक सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का हर लेवल पर, प्रकृति के ऊपर रिसर्च करो, बाबा कहे 5 तत्व के ऊपर रिसर्च करो, है ना, प्रयोग करो ना। फ्री बैठे हैं, व्यर्थ चल रहा है, अरे व्यर्थ क्यों चले, चलो आज हम बाबा ने जो वरदान में कहा उसी चीज को यूज करते हैं आज। चलो दादी गुलजार हमेशा वरदान भी याद नहीं रहता है, मुरली याद नहीं है, स्लोगन एक लाइन का तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको यूज करो। अच्छा वो भी याद नहीं रहता है, मोबाइल तो है उसमें तो मुरली आती है, फिर से पढ़ लो, चलो आज इसका प्रयोग करके देखते हैं। प्रकृति पर प्रयोग करते हैं कि हमारे वाइब्रेशन से सचमुच ये प्रकृति कितनी जैसे आनंदित हो उठी है, इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको मिल रहे हैं, कितनी आनंदित हो उठी है, देखो तो सही। प्रकृति के 5 तत्व पर, एक एक तत्व पर उसका प्रयोग करते जाओ और जब जैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, इतना फोकस्ड होंगे, एकाग्रता के साथ उसको करेंगे तो रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, देखना। और लगता है कि जो बाबा ने कहा ना, सफलता, एकाग्रता से सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सफलता तो सचमुच मेरे कदमों के अंदर समाई हुई है, हर कदम में समाई हुई है, ये महसूस करते जाएंगे और जितना उसको यूज करेंगे ना, बहुत बहुत जैसे समृद्धि अंदर में बढ़ती जाती है। जिस तरह दुनिया में कहा जाता है कि धन का जितना प्रयोग करता है तो धन धन को खींच के लाता है, कहते हैं ना दुनिया में, आप उसको यूज करो। अगर अपनी सेफ में उसको जमा करके रख दिया, वो धन को खींचेगा नहीं, उसको यूज करो तो धन धन को खींचता है, कहते हैं ना ऐसा, ये कहावत है, दान करो तो खींचेगा वो, जो दान किया वो डबल होकर के वापस आएगा, ये अनुभव है। ठीक इसी तरह ज्ञान धन जो है ना, जितना उसको यूज करेंगे, दान करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उतना डबल होता जाएगा, ट्रिबल होता जाएगा। प्रयोग करके देख लो आप, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। जितना दान करते जाते हैं ना, कई बार हमने तो ये जीवन में अनुभव किया कि किसी को सुनाते सुनाते ऐसी पॉइंट निकलती है जो मैं खुद भी साक्षी होकर के देखती हूं, अरे ये तो आज पहली बार, हाँ पहली बार निकला और इसका प्रयोग करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये खुद मैं खुद को भी जब देखती हूं कि बाबा कोई ना कोई बात ऐसी निकलवाता है जो मैं खुद भी हैरान होती हूं, ये बात मैंने कैसे कह दिया, और सचमुच इसका तो प्रयोग करके देखना चाहिए, मैंने जब दूसरे को कहा तो मैं खुद ही उसका प्रयोग करके देखूं, और सचमुच उसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा मिलता है। और इसीलिए व्यर्थ और नेगेटिव की तो मार्जिन नहीं रहेगी। जो आप कहते हैं, जो शिकायत है, बाबा व्यर्थ चलता है, व्यर्थ क्यों चल रहा है, इसका मतलब समर्थ का प्रयोग नहीं हो रहा है, तभी व्यर्थ चल रहा है। और ये व्यर्थ हमें इतना हमारी बैटरी डाउन करेगा, जो हमने जमा किया है ना वो ड्रेन हो जाता है, जैसे लीकेज हो जाता है सारा। एक तो अमृत वेले बैठ के जमा करो, मुरली सुनते समय जमा करो, और दिन भर में व्यर्थ चलाकर क्या करो, खाली कर दो, जो जमा किया हुआ है वो खाली कर दो। तो जमा क्या हुआ, इसीलिए दिन के अंत में कभी कभी हमें महसूस होता है जैसे खाली हो गए, जैसे कुछ है ही नहीं, है ना। तो ज्ञान के जो विभिन्न पॉइंट्स है, इन विभिन्न पॉइंट्स के पीछे बहुत गहरा रहस्य समाया हुआ है। बाबा ने जो ज्ञान की बातें दी है वो ऐसे ही नहीं दी है, एक आत्मा का लेसन ही बाबा ने ऐसा दिया है जो हर वक्त उसका प्रयोग करके देखो। आज सारा दिन मुझे यही स्वमान लेना है कि आत्म अभिमानी स्थिति बन करके मुझे रखना है, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है, हर एक के साथ व्यवहार करते समय मुझे आत्मिक वृत्ति को लेकर के व्यवहार करना है, और हर एक स्तर पर उसका रिजल्ट देखो। दुनिया के अंदर लोगों के पास आत्मा का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो इतना है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, बस। और क्या ज्ञान है दुनिया में आत्मा का, है ही नहीं कुछ भी ज्ञान। और बाबा ने इतना अथाह ज्ञान हमको दे दिया आत्मा के भी, कि आत्मा के सात गुण है, ये उसकी वास्तविकता है। इन सातों गुणों का प्रयोग करके देखो कि आज मैं किसी से भी बात करेंगी तो अपने स्वधर्म में स्थित होकर के बात करेगी। ये स्वधर्म में स्थित होना माना शांति, मन की स्थिति शांति वाली हो, वचन मेरे प्रेम से हो, किसी से भी बात करे प्रेम से बात करे। इसी तरह आंतरिक सुख का अनुभव करे, शक्तिशाली हमारी वृत्ति हो अंदर की। तो एक एक लेवल पर एक एक गुण को रख दो और उसका प्रयोग करो। देखो आपको योग में भी कभी नींद नहीं आएगी। जो ये कहते हैं ना योग में नींद आती है, इसका मतलब कुछ चलता ही नहीं है अंदर, हलचल ही नहीं हो रही है, इसलिए नींद आ जाती है। लेकिन उसको चलाओ, लक्ष्य ले लो कि अच्छा आज आत्म अभिमानी स्थिति का मुझे अनुभव करना है, हर लेवल पर करो। अमृत वेले से लेकर के बाबा के पास जाकर के बाबा से जैसे संपूर्ण सकाश लेकर के अपने अंदर ये शक्ति भरनी है मुझे, ये सातों गुणों को फुल चार्ज करना है, क्योंकि आज सारा दिन मुझे उसी को ही चलाना है। फिर देखो आपको हर जगह पर दूसरे दिन इसी तरह परमात्मा को यूज करना है मुझे, या परमात्मा का ज्ञान परिचय मुझे देना है, जो भी मिले। आज एक व्यक्ति को तो मुझे परमात्मा का परिचय देना है ना। और आप देखेंगे कोई ना कोई आत्मा आपके सामने आएगी, आज मुझे उसको परमात्मा का परिचय, कम से कम दो बाप का परिचय ही देना है कि एक लौकिक बाप है, एक अलौकिक बाप है, एक पारलौकिक बाप है। ये तीन बाप का परिचय देना है, पारलौकिक बाप से क्या मिलता है, उसका स्वरूप क्या है, कम से कम इतना तो सुना दे। हम देखो वो आत्मा का रिएक्शन लास्ट में क्या निकलता है, अच्छा परमात्मा को मुझे यूज करना है तो कोई भी बात हो चलो बाबा मेरे साथी चलो ये काम हम साथ में मिलके कर कंबाइंड स्थिति का अनुभव करके करो। आप लगेगा जैसे बाबा ने सारा कर दिया आप तो ऐसे ही खड़े थे। ये एक एक चीज का अनुभव करो। आपके जीवन में ब्राह्मण जीवन में कभी बोरियत आएगी नहीं, कभी बोरियत नहीं आएगी, कभी ऐसा महसूस नहीं होगा। लेकिन लोग भी आपको देखकर कहेंगे भाई इसको क्या मिला, जब देखो तो जैसे पंख लगे हुए हैं, इसको तो खुशी में उड़ रहा है, उछल रहा है, भाई क्या मिला ऐसा। और जब आप अपने अनुभव के साथ कोई बात उनको सुनाएंगे ना तो उनको भी प्रेरणा आएगी, अच्छा मैं भी करके देखूं। ये है प्रैक्टिकल विचार सागर मंथन करना, ये विधि है ना। लेकिन कभी कभी विधि रॉन्ग अप्लाई हो जाती है। रॉन्ग कब अप्लाई? जैसे ड्रामा का ज्ञान है, बाबा ने कहा जो हुआ कल्याणकारी है ना। अब ये मेरी समझ के लिए है, हमारे घर में अगर कोई ज्ञान में नहीं चल रहा है और उसका चलते चलते फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया और हमने कह दिया जो हुआ ना कल्याणकारी, अब सुनो फिर बात क्या होती है, गाली सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ये अंदर में समझने की बात है और उसके साथ उस तरीके से उसकी सेवा करो, आप प्यार से सेवा करो यही समझते हुए। और जब आप उसकी प्यार से सेवा करते हैं ना, उसके बाद आप उसको ज्ञान की दो बूंद भी सुनाएंगे ना, ड्रामा की नहीं सुनाओ लेकिन परमात्मा का परिचय, तो बाबा कैसे साथ है बाबा को साथ, तो आपको जरा भी दर्द नहीं होगा। चलो ये कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट था पूरा हो गया, ऐसी कोई तो उसको भी अंदर में खुशी आएगी है ना। कौन सी बात देनी है, रॉन्ग एप्लीकेशन नहीं करना। कई माताएं बहुत बोली होती है ना, बाबा की मुरली सुन के जाती है, पति ज्ञान में नहीं चलता है, सहयोग नहीं देता है, तो क्या कहती है, अच्छा हुआ पैर टूटा ना, कल्याणकारी है, अब क्या होगा, विघ्न बढ़ेगा या कम होगा। हाँ ये कैसा ज्ञान है, सेवा तो करती नहीं है बिल्कुल और कहती है टांग टूटी, अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ है ना। तो रॉन्ग एप्लीकेशन कभी नहीं करना, लेकिन आप इतनी प्यार से सेवा करो, उसको भी आत्मा समझ करके सेवा करो, ये भी बाबा का बच्चा है ये समझ करके सेवा करो, जो उसका दिल भी खुश हो जाए कि ये आपका ज्ञान है तो मुझे जरूर आना चाहिए। वो अंदर में संकल्प कर लेगा और जैसे ही ठीक होगा ना कहेगा चलो पहले सेंटर चलते हैं। देखो उसकी सेवा में कैसा जादू का काम करेगा। जो बाबा ने कहा कि भले उसकी टांग टूटती लेकिन कल्याण करिए कि वो सहयोगी जरूर बन जाए, लेकिन उतनी सेवा तो करें, हम सेवा करके देखो। आप ऐसे समय पर विशेष सेवा करनी चाहिए, खूब शुभ भावना के साथ सेवा करनी चाहिए। उस समय ड्रामा का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ड्रामा का ज्ञान मेरे अपने समझ के लिए है, मेरी परिपक्वता के हिसाब के लिए है ना। जब इस तरह से आप चलेंगे व्यवहारिक स्तर पर भी इस ज्ञान का अप्लाई करेंगे, कोई भी आत्मा पिघल करके, पत्थर से पत्थर पिघल करके पानी हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है, इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। जब ये चलता ही नहीं अंदर में तो शक्ति बन करके उभरती नहीं है, खुशी का अनुभव नहीं होता है और व्यर्थ चल चल करके क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, सिर भारी होता है। इसलिए व्यर्थ चलाने के बजाय, नेगेटिव चलाने के बजाय, एक एक ज्ञान की बूंद का जो कहा ना बूंद, शिव बाबा के ऊपर शिवरात्रि पर बूंद 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 गिराते, बाबा कहते यहां गिराओ बूंद 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 बूंद, उसका प्रयोग करो, मेरे ऊपर नहीं गिराओ। आप अपने मन के अंदर जो आत्मा है उसके ऊपर बूंद गिराना चालू करो और उसका प्रयोग करो, देखो कितनी खुशी। आज सुनकर के इतनी खुशी हो रही है, तो प्रैक्टिकल आएगा तो कितनी खुशी होगी सोचो, उसके एक एक रिजल्ट देख करके आपको कितनी खुशी मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये है विचार सागर मंथन करने का तरीका, ये युक्ति। अच्छा, ओम शांति।
दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है।
बाबा बस तू ही मेरा खजाना है।
बहुत सुंदर, ओ मेरे मीठे बाबा, तू ही मेरा खजाना है, दिल तो तेरे मुरली का दीवाना है। तो प्रतिदिन की मुरली पर कैसे विचार सागर मंथन करें, अवश्य ही सुंदर सुंदर युक्तियां मिली होगी। तो एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।